फिर इसी तरह कोई शख्स सुबह के वक्त ये दुआ पढ़े और शाम तक इसको मौत आ जाए तो वो जन्नती है, और शाम को पढ़े तो सुबह मौत आ जाए तो भी जन्नती है। क्या है? दोहरा लीजिए। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलकतनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका वादिका मस्ततातु आऊज़ुबिका मिन शर्री मा सनातु अबू उलक बिनेमतिका अलैया व अबू उलक बिजम्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। इसका एक और नाम भी है, सैयदुल इस्तिग़फ़ार, यानी सारे इस्तिग़फ़ारों का सरदार। देखिए, सिर्फ एक बार, और अल्लाह के नबी ने कह दिया कि मौत आई तो जन्नती। फिर अगर कोई ना पढ़े तो ये लाशौरापन है या महरूमी है। तर्जमा देखिए कितना खूबसूरत है। ए अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ। मैं जिस कदर ताकत रखता हूँ तेरे साथ किए हुए अहद और वादे पर कायम हूँ। मैं पनाह मांगता हूँ उस चीज़ के शर से जिसका मैं मुर्तकिब हुआ। मैं तेरी नेमत का तेरे सामने इकरार करता हूँ और तेरी जनाब में अपने गुनाह का इतराफ भी करता हूँ। लिहाजा मुझे बख्श दे कि तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्श नहीं सकता। मज़े की बात देखिए, हम कहते हैं दुआ जिसमें कुछ मांगे, लंबी चौड़ी बातें, काफिये रदीफ़, गा गा के दुआएं मांगते हैं, और फिर उसमें जोश और एग्जैजुरेशन, और जब तक अगला रो ना पड़े हम बोलते ही जाते हैं। हालांकि आप इन सारी दुआओं को जो पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे। अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की बड़ाई और अपने आप का छोटा होना, ये दो चीज़ें आपको दिखेंगी, और यही दुआ की रूह है। यही है कि आप अपने आप को बंदा समझें और अल्लाह को सब कुछ कह दें, बस उसके बाद बातें अल्लाह पे डाल दें। फिर इसी तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को जो अल्लाह के नबी ने सुबह शाम दुआ पढ़ने के लिए सिखाई थी, वो क्या थी? या हय्यू या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिहली शानी कुल्लहू वला तकिलनी इला नफसी तरफता आइन। ए हमेशा ज़िंदा रहने वाले, ए हमेशा कायम रहने वाले, मैं तेरी ही रहमत से फरियाद करता हूँ, मेरे सारे मामला दुरुस्त फरमा दे और आंख छपकने के बराबर भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना। कितनी देर लगती है आंख छपकने में? जस्ट एक ब्लिंक ऑफ आई। इतनी देर भी नफ्स के हवाले क्यों ना करना भाई? कि वमा उबर रियो नफसी इन्ना नफ्स अला मारा तुम बिसो। नफ्स तो इतना होशियार है कि एक लम्हे के लिए भी उसके हवाले अगर अल्लाह में कर दे, पता नहीं हमसे क्या गलत फ़ैसला करा ले। याद रखिए, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान के बाद हमारा नफ्स है, और शैतान भी हम पे जो हमला करता है ना, ये नफ्स की बुनियाद पे करता है। आप देखिए, हमें कोई बात नहीं बुरी लगेगी, जिसकी चोट हमारी ज़ात पे पड़ेगी वो बुरी लग जाएगी। हम अपने दिफा में इतने सीरियस, इतने मुखलिस कि वल्लाह अगर हम इतने संजीदा अल्लाह के दीन के दिफा में होते तो मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह लिखे जाते। हम हर उस बात पे बुरा मानते हैं जो हमें बुरी लगे, हम हर उस बात पे खुश होते हैं जिसमें हमारी तारीफ़ हो। तो नफ्स को दबाइए, और बहुत ज़्यादा अपने नफ्स को पूछना ये ख़तरनाक होता है। कैसे पता चलता है? हर बात पे इम्प्रेस हो जाना, हर बात पे मुतासिर हो जाना, और जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव हो जाना, हसास। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत हसास हैं, मुझे दूसरे की बात बड़ी चुभ जाती है, मुझे उसकी ये बात बुरी लगी, उसकी ये बात बुरी लगी। नहीं, आपके मेरे लिए असल बात यह है कि हम अपने आप को बेहतरीन तरीके से अल्लाह पे डाल दें, और जितना ज़्यादा आप अल्लाह पे डाल देंगे ना, आप फील करेंगे कि उतना ही ज़्यादा अल्लाह आपको दूसरों की बातों से बेनियाज कर देगा। अपनी ज़िंदगी से ये चीज़ खुरच कर निकाल दें कि मैं लोगों की बातों से दुखी होती हूँ। वही दुखी होता है जो नफ्स को पूछता है। अपना मुहासबा करें, बात ठीक है तो तो अगले का शुक्रिया अदा करें, और बात गलत है तो परवाह भी ना करें कि उसको गलत फहमी हुई है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब बेनियाजी आएगी ना तो बड़े बड़े काम करेंगे। और जो बंदे हर वक्त सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं ना, तो वो फिर बड़े काम नहीं करते, वो यहीं से पलट जाए जिसे जान हो प्यारी। हम दुश्मनों से क्या बचाना, हम तो अपने नफ्स के दिफा करते रहते हैं। तो ये दुआएं पढ़ते वक्त ज़रूर अल्लाह ताला से दुआ किया करें, बल्कि अलग से दुआएं हैं, नफ्स के फितनों, नफ्स की शरारतों से बचने की दुआएं हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें उनको पढ़ने की और उस पर गौर व फिक्र की तौफीक अता फरमाए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि नबी सल्लम अपने सहाबा को सुबह शाम ये दुआ पढ़ने की तालीम देते, अल्लाहुम्मा बिका असबहना व बिका अमसैना, अल्लाहुम्मा बिका अमसैना व बिका असबहना। अब आपको ये फ़र्क महसूस हुआ, पहला हिस्सा सुबह में पढ़ना होता है और दूसरा शाम के वक्त पे। व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकल मसीर, ये सुबह की दुआ में और शाम की में क्या पढ़ते हैं, व इलैकन नुशूर, यानी एक लफ्ज है वो सुबह की तरफ है तो दूसरे शाम की तरफ है। अल्लाह तेरे फजल के साथ हमने सुबह की, तेरे फजल के साथ हमने शाम की, और तेरे फजल के साथ शाम की और सुबह की, तेरे फैसले के साथ हम जिंदा हैं। देखिए हम सब अल्लाह का फैसला है। आज अल्लाह भी एक लम्हे में हमारे लिए डिसाइड कर देना कि हमने मरना है, तो हम यहाँ से उठ भी नहीं सकेंगे। कई लोगों को अपने अचानक मरते देखा होगा, नींद में ही सो जाते हैं। तेरे फैसले के साथ हम मरेंगे और तेरी ही तरफ कब्रों से उठकर जाना है और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। फिर इसी तरह अबू बकर सिद्दीक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप मुझे सुबह शाम पढ़ने के लिए कोई ज़िक्र बताएं, तो आपने उनको ये ज़िक्र बताया, अल्लाहुम्मा आलिमल गैबी वश्शहादा फातिरस समावाती वल अर्दी रब्ब कुल्ली शैइन व मलीकहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता आऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि शैतानी व शिर्किही। ए अल्लाह, पोशीदा और ज़ाहिर के जानने वाले, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, हर चीज़ के रब और मालिक, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैं अपने नफ्स के शर से, शैतान के शर से और इसके शिर्क से तेरी पनाह में आता हूँ। ये शैतान का शिर्क क्या होता है? कहता है मेरी बात मानो। शराकत उसने कही है सूरत बनी इसराइल में, आप पढ़ते हैं, व शारिक हम फिल अमवाल वल औलाद, कि अल्लाह से इसने कहा था कि मैं इन नस्ल इंसानी के माल और उनकी औलादों में अपने हिस्से लूँगा। तो शराकत दार बनता है, पार्टनर बनता है ये हमारे माल और हमारी औलादों में। अल्लाह तआला से हम मांगते हैं कि अल्लाह हमें शैतान के इस शर से बचा ले। फिर इसी तरह सुबह शाम जिन कलेमात को आप पढ़ना नहीं छोड़ते थे वो क्या थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुकल आफियता फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुकल अफवा वल आफियता फी दीनी व दुनिया व अहली व माली, अल्लाहुम्मा स्तुर औराती व आमिन रौआती, अल्लाहुम्मा अख्फज़नी मिन बैनी यदैया व मिन खल्फी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फौकी व आऊज़ु बिअज़्मतिका, और दूसरी तरह भी है, व आऊज़ु बिअज़्मतिका अन उग्ताला मिन तहती। ए अल्लाह, मैं दुनिया और आखिरत में तुझसे आफियत का सवाल करता हूँ। ए अल्लाह, मैं अपने दीन, अपनी दुनिया और अपने अहले खाना और अपने माल में तुझसे आफियत का सवाल करता हूँ। ए अल्लाह, मेरी पर्दे वाली चीज़ों की पर्दा पोशी फरमा, और मेरी घबराहटों को पुरअमन बना दे। अल्लाह मेरे सामने से, मेरे पीछे से, मेरे दाएं जानिब से, मेरी बाएं जानिब से और मेरे ऊपर से मेरी हिफाजत फरमा। और मैं तेरी अजमत के साथ इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मैं अपने नीचे से अचानक हलाक कर दिया जाऊँ। आप सूरत आराफ पढ़ चुके हैं ना? शैतान ने क्या कस्में खाई थी? तुम मलात यन मिन बैन अयदीहिम, आगे से पीछे से। ये दुआ आप देखें कि शैतान के उन सारे हमलों का तोड़ है। अल्लाह से ये दुआ करें कि हमें इन दुआओं को पढ़ने और इस पे गौर व फिक्र की तौफीक मिल जाए। फिर इसी तरह सुबह शाम आप एक और दुआ पढ़ते थे, अम सईना व अमसल मुल्क लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु वहुवा अला कुल्ली शयइन कदीर। रब्बी अस्अलुका खैरमा फी हाज़िहिल लैलति वाऊज़ु बिका من شري هذه الليلة والشر ما بعدها اللهم إني أعوذ بك من الكسل والسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر। तर्जमा क्या है? हमने और अल्लाह के मुल्क ने सुबह की और शाम की, हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इसका कोई शरीक नहीं है। ज़रा से इस जुमले को सोचिए और अल्लाह की बुजुर्गी और उसकी बड़ाई को जहन में लाइए। इसी के लिए बादशाहत है, इसी के लिए हर किस्म की तारीफ है और वो हर चीज़ पर कादिर है। मेरे परवरदिगार, मैं इस खैर का सवाल करता हूँ जो उस दिन और रात में है और जो इसके बाद है, और इस बुराई से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जो इस दिन और रात में है। यानी कोई भी फितना हो सकता है जिसको हम नहीं जानते, और जो इसके बाद है, और इस बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ जो इस दिन रात में है और जो इसके बाद है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं सुस्ती और बुढ़ापे की बुराई से तेरी पनाह में आता हूँ। मेरे परवरदिगार, मैं आग के अजाब से भी तेरी पनाह में आता हूँ। देखिए, हम ख़ुद तो इतना कुछ मांग भी नहीं सकते, याद भी ना रहे, भूल भूल जाएंगे। तो अल्लाह ताला के नबी की ये दुआएं पढ़ने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जिन चीज़ों पर हमारी तवज्जो भी नहीं जाती, हम उन दुआओं को भी अल्लाह से मांग लेते हैं। फिर इसी तरफ देखिए, सुबह शाम सूरत अखलास, सूरत फलक और सूरत नास तीन तीन बार पढ़ना। तीन तीन मर्तबा सूरत फलक, नास और अखलास पढ़ना, ये सूरतें उसे हर काम के लिए काफ़ी हो जाती हैं। कितने को मिनट लगते हैं, सच बताएं? हम जैसे पढ़ते हैं कुलवल्लाम, एक मिनट की एक सूरत। आप देखिए, किफ़ायत करेंगी ये सूरतें। लेकिन सच बताएं कि वाकई आदत होने के बावजूद भी क्या ये सब रोज़ पढ़ते हैं, पूरे शऊर से पढ़ते हैं? और अगर आप पढ़ेंगे ना, आपकी सुबह ज़िंदा हो जाएंगी। इन अज़कार के अलावा एक बंदा है मोमिन रोज़ाना हस्ब तौफीक कुरान का एक कुछ हिस्सा पूरे खुशू और खुजू के साथ तिलावत करता है और इसके मानी और मफहूम को समझने की कोशिश करता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, किताब अनज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। सूरह स्वाद की आयत 9 है। एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो है नबी हमने आपकी तरफ नाजिल की है, ताकि ये लोग इसकी आयात पर गौर करें और अक्ल व फिक्र रखने वाले इससे सबक लें। अच्छा, अब आप देखें, अभी सुबह चल रही है और मैं तसव्वुर में ला रही हूँ किसी ऐसी यंग बच्ची को जो अभी तक बिस्तर पर सोई हुई है, तौफीक ही नहीं हुई फजर पर उठने की। आपको पता है कि जब एक इंसान फजर की नमाज़ पढ़े बग़ैर सोए ही रहता है और सुबह हो जाती है, तो शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। सही रिवायत है, कभी हमें उसकी बू महसूस हुई? और आप देखिए, ये कल्चर बन गया। अब जब फजर के लिए जो नहीं उठे तो कोई दुआ के लिए उठेगा, और जब उठे जो 12 बजे तो ये इतने खजाने जो किसी ने भी लूटे वो लूट सकता है? नहीं लूट सकता। असल बात ये है कि हमें शुरू से इसकी आदत डालनी चाहिए, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल बातों की भी ज़रूरत है। हम खुद अपने आराम और सहूलत की खातिर थपक थपक के अपने बच्चों को सिलाते हैं, सो जाओ सो जाओ। मुझे वो माएँ याद आती हैं जो कहती हैं, चुप, ये सुबह 9 बजे उठ के शुरू हो जाते हैं घर में फिरना, सो जाओ सो जाओ। कई एक माँ ऐसी कि अल्लाह रहम करे, वो एक बच्चे को पिलाते थे पहले दौर में लोग, वो जो जिसमें से वो नहीं निकलती थी, क्या कहते हैं उसको, खशखाश, अफियून भी उसी की बंदी, एक पौधे फूल होते हैं डोडे से, तो उबाल के तो 2 चमचियाँ बच्चे को रात को पिलानी कि ये देर तक सोता रहे। तो जब आदत उनकी हुई, और ये तो स्कूलों वालों का अल्लाह भला करे कि सुबह 6 बजे उठा के 7-8 बजे स्कूल भिजवा देते हैं, अगर वो भी ना उठाएं तो फिर तो बच्चे सोते रहे। आदत डालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपके मेरे लिए सारी ज़िंदगी की तामीर के लिए काफ़ी हैं। देखें, ज़िंदगी बहुत कीमती है, अपने आप को कीमती समझें। आपको जो अल्लाह ने बच्चा दिया ना, ये ऐसे ही नहीं दे दिया। मैं अक्सर सोचती हूँ कि एक बच्चा एक मुसलमान और एक मोमिन औरत की गोद में डाला जाता है, और एक काफिर और फाजिर औरत की गोद में। हैं तो दोनों अल्लाह के बंदे, नसीब दोनों का फ़र्क है। एक माँ ने उसको कुंदन बना देना है और एक माँ ने उसको बिगाड़ देना है। और वो माएँ भी कितनी खुशकिस्मत हैं जो सुबह सहरियों के वक्त उठाकर अपने बच्चों को कुरान के लिए भेजती हैं। हमारे कल्चर में अल्हम्दुलिल्लाह इसका आज तक रिवाज रहा कि फजर से पहले वो बच्चे जो हिफ्स करते थे वो मस्जिदों में पहुँचते थे। हम अपने घरों में खुद ऐसे एक दो फैमिलीज़ को जानते हैं, फजर से पहले यानी तहज्जुद पे मियाँ बीवी उठते हैं और बच्चों में से जो भी बच्चे बड़े थे उनको उठाते थे, फिर पहले खुद सबक सुनना, फिर उसके बाद मस्जिद जाकर वहाँ वो सुबकी सुनाना और करना, और सूरज निकलने तक बच्चा यानी सुबह 9 बजे तक वो बच्चा मस्जिद में है। ऐसी जड़ों में आदत पड़ गई कि ना उसने तहज्जुद छोड़ी, ना फजर छोड़ी, और कुरान भी याद हो गया। माँ की मेहनत है। सच बताएं, आज की माँ को बच्चे के कपड़ों की ज़्यादा फिक्र है, उसके बेबी फूड की ज़्यादा फिक्र है, उसकी कार सीट की ज़्यादा फिक्र है, या तरबियत की फिक्र है? आप में से हर एक खुद से पूछे, यानी मेरा आपका अपना सवाल है। फजर के लिए उठती हूँ, अपने बच्चों को उठाती हूँ, रहम तो नहीं आता उन पे? और वो माँ सगी माँ नहीं है जो अपने बच्चे को फजर के लिए सिर्फ इस सोच से ना उठाए कि अभी तो स्कूल जाने में बहुत टाइम है, एक ही दफ़ा उठ के पढ़ लेगा। नहीं, हर चीज़ स्कूल के साथ चलेगी, और वीकेंड पे तो बच्चे भी सोए तो माँ भी सोए। तो इसको एक कंपेन बनाइए। कम अज़ कम अब आपके हमारे घरों में तो ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए कि फजर का वक्त कब्रिस्तान में बदला हुआ। फरमाए, वो घर जिसमें से सुबह उठ के कुरान की आवाज़ें नहीं आती वो कब्रिस्तान है। अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। क्यों? क्योंकि कब्रिस्तान में कुरान नहीं पढ़ सकते। तो हमारे घरों में सुबह उठते भी बच्चे उठ भी जाएं जब, तो क्या देखते हैं, कौन सी आवाज़ें आती हैं? तो ये सब कुछ आपके मेरे लिए ज़रूरी है। अब कहीं सुबह हुई है? यानी जब से हमने ये टॉपिक शुरू किया है अभी तक सिर्फ उठ के वज़ू किए, फजर पढ़ी है, और दुआएं पढ़ी हैं, और कुरान का कुछ हिस्सा अब तिलावत किया। अब आगे देखिए, फजर मुसलमान की सुबह क्या है? मोमिन इन सारे उमूर से फारिग होकर एतदाल के साथ नाश्ता करता है। अब ज़रा मैं लफ्ज़ एतदाल को खोल दूँ, हमारा एतदाल कहाँ बिगड़ा? ये भी वैसे अफसोस के साथ कहती हूँ, अपनी बुराइयाँ खुद करनी नहीं चाहिए, लेकिन करेंगे नहीं तो बताएंगे क्या। मैंने कभी बच्चों को सुबह उठ के चिकन नगेट्स और चिकन फ्राई और मीट बॉल्स और फलाने फलाने खाने पकाते माँ को नहीं देखा था, आज से कोई 2-4 साल पहले तक। जब से ये मुश्किल कहूँ क्या कहूँ, कई कई महीने पुराने खाने, फ्रोज़न खानों की सूरत में खाने का रिवाज हुआ। सुबह बच्चे नाश्ते पे माएँ उनके जो सैंडविच बना रही होती हैं उसमें मीट। और आप देखिए, आप कभी कोई प्रोसेसिंग, कोई ऐसी वीडियो तो देखिए ये मीट बनता कैसे है। बस पूरे पूरे जानवर को वो डाल के अंदर क्रश करके, तो हड्डी गुदा एक करके उसके आपको बनाकर मीट स्लाइसेस खिलाते हैं। अगर आप वाकई सगी माएँ हैं ना, तो अपने बच्चों को बाहर का खाना मत खिलाएं, और वो ऐसा खाना जिसमें ख़ास तौर पे मीट है। चमकती दमकती पैकिंग्स, खूबसूरत रंग डाल के उसको, गोश्त को पिंक कलर का करके आपको स्लाइसिस की सूरत में खिलाते हैं। आपको क्या पता उसके अंदर अंतड़ियाँ कटी हुई हैं या उसके अंदर चर्बी कटी हुई है कि क्या? ये मैं आपको पूरे शौर से कह रही हूँ। कभी आप प्रोसेसिंग होता हुआ गोश्त देख तो लें, हमने ये सुना हुआ है कि कसाई को अगर कह दो ना कीमा कर दो तो वो उसमें छिछड़े भी काट देता है, और वो जो वाइट वाइट कीमा है उसमें आधी से ज़्यादा चर्बी, ये तो हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है और सुना भी हुआ है। वो तो बेचारा सीधा साधा कसाई था ना। आज का जो दौर आ गया है, फैशनेबल दौर, और आप यकीन करें कि आज भी अगर आप देखें तो शायद किलो या 2 किलो की मुर्गी पाकिस्तान में 200 रुपये की आ ही जाती होगी। मुझे सही याद नहीं है लेकिन मेरा गुमान है 100 रुपये किलो गोश्त तो होगा ना। आप आई हैं पाकिस्तान से, क्या किलो है? 250 रुपये किलो। अब आप देखिए कि आप कैसे 1 किलो गोश्त है, अगर आप उसके घर में शामी कबाब बनाएं या आप गोश्त के कबाब बनाती हैं, कितने बन जाते हैं? मेरा ले 5 किलो के तो 50 बन जाते होंगे, बीच में आप कुछ भी डालें। अब आप मुझे बताइए कि वो जो इतना सा डब्बा जिसमें 6 पीस होते हैं, किसी में 8 पीस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन आप आम तौर पे देखिए 70, 80, 50, 100 का ऊपर का डब्बा, और उसमें 5 कबाब हैं, 6 हैं, किसी में समोसे हैं, और वो मर्द रातों को लाते हैं, फ्रीजरों में रखते हैं, सुबह वही बच्चे खा जाते हैं। कोशिश करें कि अपने बच्चों को फ्रेश मीट दें जहाँ भी रहते हैं। मुझे यहाँ किसी बाहर के मुल्कों का नहीं पता, लेकिन जितना बच सकें बाहर के मीट से बचें, इल्ला ये कि कोई बिल्कुल आपके सामने फ्रेश मीट के साथ कुछ बना रहा है तो कर लें। वंस अ वाइल कभी कोई शादी ब्याह मौका ऐसा आ गया और बात है, आदत ना बनाए, क्योंकि ये भी एतदाल से हटी हुई चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ आप देखिए, नाश्ते का वक्त जो होता है ना, ये सारी रात की भूख के बाद का वक्त होता है। ये भी हमारा एक अजीब कल्चर है कि नाश्ता हल्का करो। बाद लोग सिर्फ चाय पीते हैं, खाली पेट पे ऊपर चाय पी ली, कोई रस ले लेता है, कोई डबल रोटी और टोस्ट लेता है। अब आप कहेंगे ये सभी चीज़ों के दुश्मन है। आप 6 टोस्ट खा लें, एक घर की पकी हुई पतली सी रोटी और आप एक अंडा या उसके साथ आप रात का बचा हुआ सालन खाएं, आपकी तबीयत सेहर हो जाती है। ये बाजारी चीज़ें क्या इसमें है? और ये जो ब्रेड्स होती हैं, यकीन करें इनके अंदर से सारी मत इनकी मारी होती है, सब कुछ निकाला होता है। और आप आजमाएं जाके 6 डबल रोटी के पीस, आप खुद वाइट ब्रेड जो, और ख़ास तौर पे जो हमारे मुल्कों में वो वाइट मिलती है मिल्की सी, आप उसके 6 स्लाइसेस खा सकते हैं आराम से, और रोटी आप 1 से 1.25 या 1.5 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकते। वजह क्या? इसके अंदर हवा भरी हुई है, कुछ भी नहीं है। पहली माएँ जो थीं वो अपने बच्चों को अपने हाथ से बना के खिलाती थी। अब मैं नहीं कहती कि चक्की का आटा भी आप खुद ही पीसें और गूंदे भी, लेकिन आप देखें कि माँ का प्यार सबसे बड़ी बात है। अगर इंग्रेडिएंट्स का फ़र्क ना भी हो ना, एक बात याद रखें, और ये बात आज प्रूवन है, जिन हाथों से वो पकता है ना, उस बंदे का तकवा, उसका ईमान, उसका प्यार अंदर जाता है। आप नेक लोगों के हाथ का पका खाएं, आपके अंदर नेकी की खू आएगी। और जो हम फास्ट फूड और बाहर का गंद बला खाते हैं, वो देते कौन है? मुझे किसी के साथ खड़े होने का इत्तेफाक हुआ कुछ अर्सा पहले। हमेशा से हमने सुना हुआ है कि ग्लव्स यूज़ करते हैं लोग बाहर के, ख़ास तौर पे जी ये जो फास्ट फूड है और चेन फूड है, यानी बहुत ही महंगा फूड है, कहते हैं चलो ये साफ़ सुथरा तो होता है। तो एक सिस्टर थी, अपनी बच्ची के लिए कुछ ले रही थी, तो मैं भी साथ थी उनके, खड़ी कह रही खड़े हो जाए, मैंने कहा ठीक है। अब मैं जो चीज़ देख रही थी ना, वो अंदर वो सामने कर रहे होते हैं सब कुछ, वो जब अंदर से कबाब, वो जो भी उनके मीट होता है वो फ्राई होता है, तो उसके बाद डबल रोटी के स्लाइस में तो खुद आदमी लगाते हैं ना, औरतें भी थी आदमी भी थे, और मैं देख रही हूँ बग़ैर ग्लव्स के, और मैं देख रही हूँ कि वो कोई गोरा है कोई काला है, और मुस्लिम तो कोई भी नहीं था, वो तो नॉन मुस्लिम चेन थी। मुझे तो उबकाइयाँ आए, मैं सोचूँ पता नहीं ये जनाबत से ना हो, पता नहीं इसके ऊपर गुसल ना हो, पता नहीं इसने बाथरूम में भी जाना है कि नहीं। फिर मैंने उसको देखा कि शायद ये नहीं, सारी जो चिप्स भर रही थी पैकेटों के अंदर, वो भी बग़ैर ग्लव्स के कर रही थी। जो काउंटर पर लड़की थी, मैंने उसको बोला, अब उसको इंग्लिश कम आती थी या क्या आता था, तो जो मेरे साथ ही, मैंने कहा इसको बताओ मेरा क्या इस वक्त मसला बना हुआ है। उसने फिर उसको समझाया कि ये पूछ रही है कि ये ग्लव्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो अब उसने बात बनाने की कोशिश की, कहती वो जो सामने ना, वो तो ओवन के आगे खड़ा है ना, तो वो ग्लव्स कैसे यूज़ करे? कि वो हालांकि आपको पता है कि ओवन में से भी अगर कोई फ्राई चीज़ निकलती है तो हाथों से थोड़ी पकड़ते हैं वो, कोई ज़ाहरा के बड़े बड़े पैंस होते हैं। बहरहाल उसने मेरी बात नहीं सुनी, तो मेरा ख्याल है कि मैंने खाना होता तो मैं तो ना खाती, सिर्फ ये सोच से कि ये बंदा, इसके हाथ पता नहीं साफ़ हैं कि नहीं। और साथ देखे लड़के लड़कियां ऐसी चेन्स पे होते हैं, मजाक हंसी और उछला कूदी, और खाने बना के दे रहे हैं। मैं अपने बच्चे को कभी ना खिलाऊं, ये मैं आपको सच बता दूं, उसकी माँ जिंदा रहे वही उसके लिए पकाए। मैं नहीं कह रही कि आप बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन आप फील करेंगे इसका असर आपके बच्चों में जाता है, आपके बच्चे स्कूलों में, अपनी कैंटीनों से, और बाहर के खाने के जितने रसियां होंगे आप देखिए कि उनका खाना इत्तेदाल से हटा होगा। बहरहाल जिसको बुरा लगा हो वो मुझे माफ़ कर दे, लेकिन ये मेरे अपने दिल के अंदर एक चीज़ है जो मैंने आपसे शेयर की है। तो बहरहाल खाना इत्तेदाल के साथ, हेल्दी फूड में सबसे ज़्यादा आपको होता है कि स्ट्रॉन्ग और हेल्दी खाना नाश्ता होना चाहिए, क्योंकि 8-9 घंटे का स्टमक खाली था। पूरा एनरिच्ड फूड दीजिए उस वक्त, जिससे बच्चे की प्रोटीन, न्यूट्रिशन और अपना सब ठीक हो। और फिर ये नहीं कि अब 2 घंटे बाद फिर भूख लग गई है। हम चूंकि इतना लाइट नाश्ता करते हैं फिर हमें 12 बजे फिर भूख लगती है। 2 वक्त का खाना बेहतरीन खाना है। जन्नत में कुरान में आता है कि जन्नतियों को 2 वक्त खिलाया जाएगा, तो मैं सोचती हूँ हमारे पाकिस्तानियों ने तो जाके बड़ा दुखी हो जाना है, हाय दोपहर का खाना ही चला गया। लेकिन फितरत के साथ देखें ना, सुबह बेहतरीन खाना खाएं, बिल्कुल आप उसको ब्रंच कह लें, खाना कह लें, रोटी कह लें, आप रात की बची हुई रोटी चाय के साथ ले लेना, तो आपको फिर 5-6 बजे तक भूख नहीं लगेगी। और 6 बजे आप डिनर ले लें, ख़त्म। रात सोते वक्त अगर भूख लग गई है तो चले आप कोई दूध का कप ले लें, कोई आप फ्रूट ले लें। हम क्या करते हैं, मज़े की बात देखिए, सुबह भूखे होते हैं तो बिल्कुल नाश्ता हल्का सा, फिर 12-1 से 2 के बीच में खूब माशाल्लाह अच्छा सा लंच, और अब लंच इतना हैवी हो गया है तो फिर भूख तो कहाँ लगनी है, और 4 बजे की चाय, और उसके साथ भी समोसे जलेबियाँ लाजमी हैं। पाकिस्तानी होने का हक ही अदा होता है कि आने वालों को पकौड़े समोसे खिलाओ, और अब तो उसमें रोल भी। तो अब एक मेहमान घर में आता है ना, 4 फ्राई चीज़ें होती हैं, मुझे इस पर बहुत गिला है। रियली बंदा किसी की खुशी के लिए कुछ भी कह दे, लेकिन ये बात ठूस नहीं है। एक फ्राई चीज़ बनाए अगर आपने खिलानी है तो, आप अगले को क्यों मजबूर करते हैं, और फिर जब बनेगी तो कोई खाएगा ना। और आप देखिए 4 चीज़ें इकट्ठी हैं तो 4 चॉइसेस भी आपने दे दी ना। अब जब मगरिब की नमाज तक चाय और फ्राई चीज़ें और दही बल्ले चल रहे हैं तो डिनर अभी कौन करे, वो फिर कब करते हैं, 9-10 बजे। अमूमन हमारे मुल्कों में लेट नाइट डिनर है, और डिनर के फौरन बाद सोएंगे तो खाना कहाँ होगा, सीना जलेगा ना। तो आप देखिए यही हम सीख रहे हैं, और यकीन कीजिए कि हमारी ज़िंदगी की बरकत चली गई है जब से हमारा खाना पीना बदल गया। आज भी जहन में है, हम बचपन में जब जाते थे अपने किसी भी अपने फैमिली में, फुलके बनते थे सुबह उठ के, फजर के बाद नानी ने मामानियों ने उठ के आटा गूंदना, सादे फुलके, और देसी घी होता था तो ऊपर हल्का हल्का सा उसका लगाना, और अचार, और रात का बचा हुआ सालन, और दही। जिसने दही मांगा उसको दही में चीनी डाल दी, जिसने अचार खाना है अचार, जिसको सालन, ये नाश्ता होता था आज से पहले। ये डबल रोटियां तो उस वक्त नहीं थे लोग खाते, और मुझे लगता है वो ज़्यादा हेल्दी खाने थे। और आज फ्रिजें भरी हुई हैं, आप देखिए 10-10 किस्म के तो हमारे किचन में सिर्फ मेन्यू पड़े हैं, ब्रेड की कितनी किस्में तो हमारे घर में पड़ी होंगी। तो नतीजा क्या हुआ कि वो इत्तेदाल से हट गए, माएँ मसरूफ़ हैं, फिर करें क्या। और आप देखिए कि जो फिर बाज़ार की चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए उसमें केमिकल्स डालते हैं, वजह क्या है, तभी तो वो ख़राब नहीं होती कई के दिन तक। तो बहरहाल ये कि जितना सिंपल, और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, खाना जो पकने में आसान है ना वो हज़म में भी आसान है। जो पकने में भूनो, प्याज की मत मारो पहले, उसको जहन्नुम में जलाओ, फिर उसके अंदर अदरक को जलाओ, फिर लहसुन को तड़के लगाओ, फिर मर्चें लगाओ, फिर गोश्त को भूनो, ये सजा ही दे रहे हैं ना बकरे को। तो उसके बाद फिर उसमें अब ये जब से क्रीम आ गई है, अल्लाह के हुक्म से आप देखिए कि जो क्रीम डालते हैं खानों में आज के दौर में, ये कितनी बड़ी एक मुश्किल है। तो हमेशा अपने लिए ये असूल बनाएं, अपने घर वालों के लिए खाना बनाएं इजी सिंपल, और बिलीव मी इसमें टेस्ट ज़्यादा होगा। ये आप कॉन्सेप्ट छोड़ दें, हमारे आप देखें ना खाने में से ऐसे घी नुचड़ा, अब करेले ही को पकाए तो आधी प्याली नीचे से घी की निकल आती है, ये दुरुस्त नहीं है। इत्तेदाल का खाना होगा, आप देखेंगे उसके बाद सेहत अच्छी होगी। आज इतना कुछ है, डॉक्टरों के चेकअप हैं, खाने प्योर हैं, ऑर्गेनिक हैं, इस मुल्क में शायद उसको बायो कहते हैं, फिर बीमारियां तो नहीं होनी चाहिए ना, फिर डॉक्टर अपॉइंटमेंट तो बिल्कुल ना हो, उतना ही ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारे खाने पीने में भी इत्तेदाल हो जाए। बहरहाल अब नाश्ते पे आए, नाश्ता हुआ फिर रोज़मर्रा के काम की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, और तदबीरे मुआश और तलबे रिस्क की दौड़ धूप में लग जाता है। वो इस बात की कोशिश करता है कि अपने आप को किसी न किसी हलाल काम में मशगूल रखे, चाहे वो कितना ही बड़ा साहिब सरवत और मालदार क्यों ना हो, ख्वाह इसकी मशगूलियत सिर्फ निगरानी और देखभाल की हद तक ही क्यों ना हो, इसलिए कि छोड़ा हुआ माल चोरी की नज़र हो जाता है। क्या पता चला, हलाल कमाना ये भी मुसलमान की सुबह का हिस्सा है। जब घर से निकले तो हर मर्द पूछे क्या कमाने जा रहा हूँ, और जो बिकेगा क्या वो बिकना चाहिए? जैसे एक माँ थी तो बेटे के कारोबार में कोई ऐसी ख़राब चीज़ थी जिसको लोग शराब कहते हैं, तो कहती थी कि मैं क्या ये दुआ करूँ कि तेरी बड़ी चले दुकान यदि शराब बहुत बिके, और शराब पी के लोग करेंगे क्या? आप इसी से समझ लीजिए, जो लोग गलत कारोबार करते हैं क्या उनको दुआ दी जाए कि लोग खूब जुआ खेलें, खूब लॉटरियां खेलें, लोग खूब गंदे काम करें इसके बाद, और फिर बंदा फतवा ले ले किसी से कि जी बहुत बड़ा फतवा है कि जायज़ है, फिर हम खाते तो नहीं खिलाते ही है ना, तो जिना करवा लीजिए करें ना, जायज़ हो जाएगा? देखिए कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि हम खुद तो नहीं खाते तो दूसरों को खिलाते हैं, तो तआवुन अलल बिर्रि व तक्वा वला तआवुन अलल इस्मि वल उदवान किधर गया? और शराब पे तो 10 लफ्ज़ हैं, शराब पे लानत, बेचने वाले पे, खरीदने वाले पे, कशीद करने वाले पे, जिसने इधर से लाया जो उधर ढो रहा है, 10 लानते हैं एक हदीस के अंदर शराब के ऊपर, बजाते खुद लानत है, तो फिर एक मुसलमान अगर उसमें इन्वॉल्व हो तो ये तो उससे भी बड़ा जुर्म है। तो लिहाजा रिस्क हलाल कमाना मुसलमान के वक्त में बरकत भी लाता है। फिर इसके बाद देखिए कि यही वजह है कि इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया है, इसलिए कि ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें किसी कदो काविश यानी मुश्किल के बगैर और शिरकत और अंदेशे के बगैर माल लाजमी तौर पर माल को पैदा करता है, और सूदखोर पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ सोफे पर बैठा रहता है। वो जानता है कि इसके 100 रुपये लाजमन इसके लिए 110 और 1000 रुपये 1100 लाएंगे, और इस पर किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं होगी। ये इस्लाम के नज़रिए इंसानियत के सरीहन खिलाफ है। आज तो कौन है जो इससे बचता है? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि सूद नहीं तो उसका गुबार ज़रूर पहुँचेगा, क्या आज वो वक्त नहीं आ गया? घर सूद के बगैर मुमकिन नहीं, गाड़ी सूद के बगैर मुमकिन नहीं, कारोबार मुमकिन नहीं, बैंकों से ट्रांजैक्शन मुमकिन नहीं, क्यों हुआ ये सब? कभी आपने सोचा कि हम मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की? दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। माशरे में जो गंदगी है ना, सीधी सी बात है, उसकी ज़िम्मेदारी आप कबूल करें, क्योंकि कुन तुम खैर उम्मत नुखरीजत लिन्नास तामरून बिलमारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। बहरहाल सूद के ऊपर तो जितना बोलें उतना कम है, लेकिन इस वक्त तो बस इतना ही कर लें कि ऐसी किसी चीज़ की इस्लाम में गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह ताला हमारी सुबहों को भी पाक कर दे।